रैना खिड़की से बाहर देखने लगी, होंठ काटते हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अखिल की हरकत पर गुस्सा करे या उसके शब्दों में छुपी कसक को सुने। कुछ देर बाद अखिल ने धीरे से कहा, रैना, ये दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी तुम सोचती हो। हर मोड़ पर शिकारी बैठे हैं। अगर तुमने आज उन्हें सबक नहीं सिखाया होता तो शायद कहानी और होती। रैना ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। और तुम? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम किस मोड़ पर खड़े हो? रक्षक हो या शिकारी? अखिल ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई, लेकिन उसमें दर्द झलक रहा था। मैं वही हूं जिसे लोग शिकारी भी कहते हैं और रक्षक भी। फर्क नजर पर है। रहना चुप हो गई। कार की स्पीड कम हो गई थी, जैसे अखिल जानबूझकर रास्ता लंबा कर रहा हो। दोनों के बीच खामोशी घुली रही। कुछ मिनट बाद अखिल ने गाड़ी रोक दी। उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया, रैना ने दरवाज़ा खोलने से पहले ठंडी आवाज़ में कहा। अगली बार मुझे अपनी कार में बैठाने की कोशिश मत करना। अखिल ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा। अगली बार? तो तुम मान रही हो कि हम फिर मिलेंगे? रैना की कदम रुक गए। मुझेम कर बाहर निकली और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। अखिल वहीं बैठा, गाड़ी का इंजन बंद किए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम्हें गुस्सा जितना भी आता रहे रैना, लेकिन तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे रक्षक बनकर या शिकारी बनकर। रैना अपने गेट की तरफ तेज कदमों से बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अखिल की आखिरी लाइन गूंज रही थी। विक्रम के आलीशान बंगले में उस वक्त बेचैनी का माहौल था। बड़े कमरे की घड़ी टिक टिक करती जा रही थी, लेकिन हर एक सेकेंड विक्रम की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। वो अपने कमरे में लगातार इधर उधर टहल रहा था। आखिर रैना अभी तक घर क्यों नहीं आई? उसका फोन भी बंद आ रहा है, विक्रम बुदबुदाया। उसी समय दरवाज़ा हल्का सा खुला और नौकर ने व्हीलचेयर पर बैठे राजेश जी को अंदर लाकर कमरे में खड़ा कर दिया। राजेश जी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। राजेश जी ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा रैना इतनी देर तक क्यों बाहर है। हमेशा तो वो वक्त से घर पहुंच जाती है, आज ये देरी मुझे डरा रही है। विक्रम तुरंत उनके पास आकर झुक गया और उनका हाथ पकड़ लिया। अंकल, आप चिंता मत कीजिए, शायद कहीं बस या टैक्सी में दिक्कत हो गई होगी, लेकिन हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है कि फ़ोन तक बंद है। इतना ही हुआ था कि तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मोनी कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और थोड़ी बेपरवाही झलक रही थी। पापा, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, मोनी ने लापरवाही से कहा। आप जानती हैं ना, रैना कितनी स्मार्ट है, उसे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, ना घर की ना हम सब की, इसीलिए तो इस वक्त तक बाहर है। उसे अपने घर वालों की कोई कदर नहीं है। राजेश जी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। मोनी, ये कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें उसके बारे में इस तरह उल्टी सीधी बातें करने की जरा भी तमीज़ नहीं है। मोनी होंठ भींच कर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नापसंद की झलक रही थी। विक्रम ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, अंकल, आप परेशान मत हो, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि रैना कहाँ रह गई है, शायद उसे बस ना मिली हो या रास्ते में कोई दिक्कत आ गई हो, मैं जाकर अभी पता करता हूँ। राजेश जी ने उसकी ओर राहत की नज़र से देखा और सिर हिलाया। ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा संभल कर जाना, विक्रम ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, मैं उसे लेकर ही वापस आऊँगा। कमरे में अब भी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी, लेकिन माहौल में थोड़ी उम्मीद आ गई थी, जैसे विक्रम की दृढ़ता ही सबको सहारा देने वाली हो।